की ये प्रोग्राम है पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक का।
मैं हूँ राबिया अली, आप सबके लिए सलामती की दुआ के साथ। सामीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी आपकी बात होती है हकूक से मुतल्लिक, उन हकूक से मुतल्लिक जो इंसान के तौर पर, शहरी के तौर पर हमें हासिल हैं या हमें मिलने चाहिए।
और मैं हूँ वकार मुस्तफ़ा। सामीन, पाकिस्तान की आधी आबादी ख्वातीन पर मुश्तमिल है, मगर माशरती तौर पर ख्वातीन को कमतर समझा जाता है और इनको माशरे में तरक्की के बराबर मौके नहीं मिलते। आज़ादाना तौर पर अच्छी और आला तालीम हासिल करना इनके लिए मुश्किल, मुलाजमत मुश्किल, घर से बाहर जाना मुश्किल। ख्वातीन के मुआफिक बहुत से कवानीन बनाए गए हैं, मगर इसके बावजूद बुनियादी सवाल अब भी बाकी है, क्या ख्वातीन के हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए बनाए गए कवानीन का असर आम ख्वातीन की जिंदगियों पर पड़ा है? किसी हद तक इसका जवाब हाँ में है, मगर फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ख्वातीन के हुकूक और कवानीन ही के पस मंज़र में हमने बात की वकील और इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन आसमा जहांगीर से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पहली खातून सदर बनने का एजाज हासिल है, पाकिस्तान कमीशन बरा इंसानी हुकूक की सरबराही भी कर चुकी हैं, मजहबी आज़ादी के लिए अक्वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब की हैसियत से भी जिम्मेदारियां अदा कर चुकी हैं। जी बताइए, क्या मुल्की कवानीन हुकूक इंसानी और ख्वातीन के हुकूक की हिफाजत कर रहे हैं?
देखें, कुछ तो हमें हुकूक मिले हैं आईन में, मगर बहुत सारे हुकूक ऐसे हैं जो कि बैनुल अक्वामी दुनिया मानती है मगर वो आईन में नहीं है। मसलन यहाँ पे तशद्दुद का मसला है, टॉर्चर का, तो हमारी जो आईन है वो कहती है कि सिर्फ किसी से एविडेंस निकालने के लिए आप टॉर्चर ना करें, मगर अगर ना भी हो तो ये एक कानून और ये एक कदर ऐसी है, ये वैल्यूज हैं जिसके अंदर दुनिया भर जो है इसको एक्सेप्ट करती है। आप देखें, नया उन्होंने राइट टू एजुकेशन यानी कि तालीम का हक जो है वो दिया है। वो हक तो दे दें, मगर अगर तालीम का हक दें तो उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तो ज़रूरत होती है। इसी तरीके से किसी को पकड़ा ना जाए बेबुनियाद, अब वो भी बड़ी अच्छा हक है, मगर वो अदालतों में जाना पड़ता है, जिसके पास पैसे नहीं होते वो जा नहीं सकता, रसाई नहीं होती है। तो सिर्फ कानून से काम नहीं चलता है, रवैयों से काम चलता है, ट्रेडिशन से काम चलता है, और इंस्टीट्यूशन जो आपके इदारे हैं जिन्होंने इन कवानीन को नाफिज करना है और चलाना है, जिसमें पुलिस भी शामिल है, प्रोसिक्यूटर भी शामिल है, अदालतें भी शामिल हैं, उनके जब तक असलाह नहीं होगी तो मैं नहीं समझती कि किसी को सही तरीके से हकूक मिलेंगे, आप चाहे कितने क्यों ना कानून बना लें।
जरा ये बताइए कि कौन कौन से कवानीन रुकावट बनते हैं, कौन कौन से समाजी रवैये हारिज हैं ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने में?
देखिए, जहाँ तक ख्वातीन का ताल्लुक है वो तो आईन में लिखा हुआ कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होगा, मगर उसके साथ साथ बहुत सारे कवानीन हैं जिनमें उनके साथ इम्तियाजी सलूक होता है और आईन ने उन कवानीन को प्रोटेक्ट भी किया हुआ है। उसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो खुद हदूद ऑर्डिनेंसेस में है, जहाँ पे हद की सजा के लिए औरत की जो है वो शहादत सिरे से ही नहीं है, और या ऐसे कवानीन जो कि फैमिली लॉज जिसको हम कहते हैं आयली कवानीन, उसमें दो मुख्तलिफ रोल्स अदा हैं, और जो औरत है उसको वो हक नहीं है जो कि एक आदमी को होता है, बच्चे की जो वरासत जो कि गार्डियनशिप कहते हैं उसमें, या आदमी जो है वो तीन तलाक करता है औरत को जाना पड़ता है फैमिली कोर्ट लेने के लिए, तो बहुत सारे इम्तियाजी सलूक हैं उसमें कि अगर आपको कानून के सिस्टम का पता हो तो आप उसको बड़ा मिसयूज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जब सिस्टम के अंदर खराबियां हों, खासतौर पे जो कानून का सिस्टम है जिसको आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कहते हैं, अगर उसमें बहुत सारे लूप होल्स हों और आपको उन लूप होल्स का पता हो तो आप बाकायदा तौर पे उसको बड़ी बुरी तरह से अपने हक में इस्तेमाल, मिसयूज यानी कि गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो रवैयों में तब्दीली कैसे हो?
ऊपर से इम्पोज अगर कर भी दे तो वो रवैये थोड़ी देर के लिए बदले जाते हैं, मगर ये लंबी जदोजहद है, मगर औरतों की जदोजहद से हमें एक सबक सीखना चाहिए। 1980 में यूं लगता था जैसे औरतें जो हैं वो घर में ही बंद होकर रह जाएंगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जदोजहद करते हुए औरतों ने मुश्किलात भी काटी, जेलें भी काटी, लाठियां भी खाई, बहुत जिल्लत भी उनकी हुई, मगर वो आवाज बुलंद उन्होंने रखी, اور اپنے حقوق کی بات کرتی رہیں. جہاں بھی حکومت نے کوئی پالیسی دی یا قانون دیا جہاں پہ ان کی جو حیثیت ہے اس کو کم کیا گیا یا اس کے سٹیٹس کو کم کیا گیا قانونی سٹیٹس کو, تو انہوں نے کوئی ایسے ایکٹیویزم نہیں چھوڑی جو کہ خط لکھنے سے لے کے جلوس اور جلسوں تک انہوں نے کیا. میں اب دیکھتی ہوں کہ وہ جو ایک شعور انہوں نے اس وقت شروع کیا وہ آج شعور آ گیا ہے, عورتوں میں وہ شعور ہے. تو میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, لوگ بدلتے ہیں, ذہن ہوتا ہی بدلنے کے لیے ہے, تو ذہن ضرور بدلتے ہیں. اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں عورتوں کا تعلق ہے, کسی کے ذہن بدلے یا نہ بدلے عورت نے آگے ہی جانا ہے. اب وہ اس جگہ سے نکل آئی ہے جہاں پہ اس کا بند جو دماغ تھا وہ کھل چکا ہے.
قوانین سے عدم واقفیت پر آپ کا کیا کہنا ہے؟
میں یہ سمجھتی ہوں کہ قوانین تو اتنے زیادہ اس میں نہیں ہیں جو کہ ان کو اپوز کرتا ہے, مگر ایک تو سماجی طور پہ لوگ جو ہے وہ عورتوں کو سمجھتے ہیں کہ اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, مگر عورت خود بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھتی ہے کئی بار. تو جہاں تک عورتوں کی صحت کا تعلق ہے, آپ دیکھیں گے کہ کس طرح عورتیں جو ہے اونٹوں کے اوپر بچے پیدا کرتی ہیں, کوئی طبی ان کو نہیں سہولت ہوتی ہے. پھر یہ ایک ہوتا ہے کہ جی لیڈی ڈاکٹر نہیں کئی جگہ پہ, جہاں پہ اندرونی ملک میں جگہ ہے وہاں پہ نہیں مہیا ہے, خواتین کو مرد ڈاکٹروں سے کوئی نہیں دکھوانا چاہتا. اور جب یہ پرائیورٹیز کی بات آئے کہ میں نے اتنے پیسے خرچ کرنے ہیں, تو سب کی صحت پہلے آئے گی اور عورت کی صحت بعد میں آئے گی. اسی طریقے سے تعلیم کی بات کریں تو وہ تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں, وہ تو فگرز ہیں آپ کے سامنے, اور خاص طور پہ بلوچستان میں عورتوں کی شرح جو ہے تعلیم کے لیے بہت کم ہے. ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ بہت بڑا ایک صوبہ ہے اور بہت پھیلا ہوا ہے, تو وہاں پہ جنرلی بھی تعلیم کم ہے, مگر ایک رویہ بھی ہے. اور ایک یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ ذرا سی پڑ گئی تو وہ شاید کوئی شیطان بن جائے گی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے, کم تر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے یہ شاید ہمارے مقابلے پہ کھڑی ہو جائے گی. مگر عورتیں جو ہیں وہ کسی کے مقابلے پہ نہیں کھڑی ہوتی ہیں, وہ اپنے مقام پہ کھڑی ہیں اور ان کو اپنے مقام پہ کھڑا ہونا چاہیے. بڑی دیر لگتی ہے, یہ جو عورتوں کی خاص طور پہ جد و جہد ہے یہ تو کئی ہزاروں سالوں پرانی ہے, اور سب سے پرانی یہ جد و جہد ہے, یہ نئی نہیں ہے. میرا خیال دنیا کی سب سے پرانی یہ سماجی جد و جہد ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آگے تو جانے کی ضرورت ہے, مگر اس میں جو سب سے جو ایک میں سمجھتی ہوں ایک چیز ہے جو کہ سوچنے والی ہے کہ اس ملک کے اندر باوجود اس کے کہ کئی چیزیں بہت آہستہ آہستہ اور مگر پختہ طریقے سے بدل رہی ہیں, جہاں لوگوں کو ایکسس نہیں ہے, رسائی نہیں ہے, جہاں جو ڈسیزن میکرز ہیں یعنی کہ جو لوگ فیصلے کرتے ہیں ان تک نہیں ہے, قانون تک نہیں ہے, پولیس اسٹیشن تک بھی نہیں ہے, ڈپٹی کمشنر ڈی سی او تک نہیں ہے, وہ جو ایک بند دروازے میں یہ معاشرہ چل رہا ہے چند کے لیے, وہ لوگوں کو ایک ریاست سے دور کر رہا ہے. یہ ایک بہت المیہ ہے یہاں پہ.
آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے معاملات میں صوبوں کو قانون سازی کے اختیارات ملے, آپ کے خیال میں صوبائی اسمبلیوں کی قانون سازی کی رفتار کیسی ہے؟
18th امینڈمنٹ کی جو اسپرٹ تھی وہ بہت اعلیٰ تھی کہ ہمیں اپنے صوبوں کو پختہ کرنا ہے, مگر جس طریقے سے امینڈمنٹس کی گئی ہیں مجھے کئی دفعہ خوف آتا ہے کہ فیڈریشن کو تو ہم نے کمزور کر دیا, مگر اس طریقے سے جو صوبے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوئے. دوسرا جو 18th امینڈمنٹ آئی, 18ویں ترمیم جو کہ آئی, اس نے بہت سارے ایسے چھکے چھوڑ دی آئین میں اور وہ ابھی بھی استعمال ہوتی ہیں. وہ جب تک نہیں نکلیں گی میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کی جو یہ ٹرانزیشن ہے یہ جڑیں پکڑے گی. اور یہ آہستہ آہستہ میں سمجھتی ہوں ہمیں باور کرانا ہے اپنے سیاستدانوں کو اور خاص طور پہ پارلمان کو کہ جب تک یہ آپ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی والے شکے یا آرٹیکلز جو آئین سے نہیں نکالیں گے تو یہاں پہ جو پارلیمنٹ ہے وہ واقعتاً جو ہے وہ کھوکھلی رہ جائے گی. یہ صرف فیملی لاز میں نہیں ہے گڑبڑ, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں فیملی کورٹس ایکٹ بھی مختلف صوبوں میں ہے, اور کئی دفعہ ہم وکیل خود گھبرا جاتے ہیں کہ کون سی جو قانون ہے وہ کیا ہے ملک کے اندر. ہمیں اب لکھنا پڑتا ہے کہ اب پنجاب میں یہ ہے, سندھ میں یہ ہے, مگر جو بیسک بنیادی حق ہوتا ہے جب وہ مختلف ہو جائے گا تو وہ آپ کیسے اوور کم کریں گے. مثلا سندھ نے کہا کہ 18 سال کی لڑکی اور 18 سال کے لڑکے کو شادی کرنی چاہیے, پنجاب نے کہا 16 سال. تو جب وہ پنجاب میں ہوگا تو قانون کی نفی کرے ہوں گے, جب وہ سندھ میں ہوں گے تو ٹھیک ہوگا. تو یہ عجیب سی کوئی چیز اور کھچڑی ہے. میں تو اپنے طرف سے سمجھتی ہوں کہ جہاں تک عائلی قوانین کا تعلق ہے, اور نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ باقیوں کے بھی, اس کے اندر واقعی ایک کوآرڈینیشن کمیٹی ہونی چاہیے پروونشل, جو کہ سارے صوبے اپنے جیسے کریں.
انسانی حقوق کے کچھ پیغامات.
میں ایک بچی ہوں, میرا اور سب بچوں کا حق ہے تعصب نہ ہو, تشدد نہ ہو, زندگی محفوظ اور معیاری ہو, سوچ معلومات اظہار کی آزادی ہو, تعلیم ملے ایسی کہ سیکھے امن سے رہنا, ماحول کی حفاظت کرنا اور احترام انسانی حقوق کا. پروگرام بات حق کی میں FM 101 پر ہفتہ اور اتوار کی دوپہر 12:30 بجے پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق.
تاریخ کے اوراق صنفی تشدد کے بدنما دھبوں سے بھرے پڑے ہیں. اسی تناظر میں ہم نے بات کی گلنار تبسم سے, خواتین کے حقوق کا پرچار کرتی ہیں.
میرا معاہدہ ایک شہری کے حیثیت سے وہ ریاست کے ساتھ, اور ریاست کی ذمہ داری کے مجھے پروٹیکٹ کرے, چاہے وہ ماحول میرے گھر کا ہو, چاہے میرے محلے کا ہو, چاہے میری گلی کا ہو, چاہے میری سڑک کا ہو, چاہے جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں. سارے رشتے ہیں, چاہے ماں باپ اور بچوں کا رشتہ ہے, وہ محبت سے زیادہ خوف. بھائی باپ ایک بڑی پیاری چیز ہے, تو باپ کو مجھے دوست بنانا ہے, خاوند کو مجھے دوست بنانا ہے, بیٹے کو مجھے دوست بنانا ہے, بھائی کو مجھے دوست بنانا ہے, تاکہ ایکول لیول پہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھیں تو میں اس کے لیے کچھ بہتر کر سکوں, وہ میرے لیے کچھ بہتر کر.
پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق.
پیارے بچوں, میں ہوں جواد احمد. کیا آپ سکول جاتے ہیں؟ نہیں, کیوں؟ کیا آپ کو پتا ہے
الگ سے اچھا بے سے بچہ بے سے پیارا لگتا ہے, اچھا بچہ پیارا لگتا ہے,
اچھا بچہ کیا کرتا ہے,
اچھا بچہ پڑھتا لکھتا ہے.
سنو بچو, اٹھاؤ بستہ, وہ دیکھو اسکول کا ہے آگے رستہ, جو لکھتا ہے اور جو ہے پڑھتا, وہی بچہ تو ہے آگے بڑھتا. پڑھ لکھ کر خود کو اور معاشرے کو سنوارے.
پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق.
سنا بچو, اٹھاؤ بستہ, وہ دیکھو سکول کا ہے آگے رستہ, جو لکھتا ہے اور جو ہے پڑھتا, وہی بچہ تو ہے آگے بڑھتا.
قوانین موجود ہیں لیکن اصل مسئلہ ان کے نفاذ کا ہے. پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے اس پروگرام میں آج ہماری بات ہو رہی ہے آسما جہانگیر سے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی پہلی خاتون صدر رہی ہیں اور پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کی سابق سربراہ ہیں. جی
دیکھیں, بہت سارے مسائل ہیں خواتین کو, اور ہم جب کہتے ہیں کہ فیملی لا آرڈیننس جو ہے 1961 کا, وہ عورتوں کو حقوق دیتا ہے, تو عورتوں کو تو خاص اس نے کوئی حق دیا نہیں ہے. ہاں یہ ایک ضرور بات ہے کہ وہ 1961 کا جو قانون ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا عورت فوت ہو جائے تو, اور ان کے ماں باپ زندہ ہوں, تو جو فوت ہوئے ہوئے لوگ ہیں ان کے بچوں کو دادے یا دادی یا نانا یا نانی کی وراثت مل سکتی ہے. ایک یہ بڑی اچھی بات اس فیملی لا آرڈیننس میں کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی اگر کوئی دوسری یا تیسری شادی کرے تو یونین کاؤنسل سے اجازت لے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت سے بیوی سے اجازت لینی پڑتی, حالانکہ ایسا نہیں ہے, یونین کاؤنسل سے اجازت لینی پڑتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پروسیجر دیا ہوا ہے کہ نکاح جو ہے وہ کیسے رجسٹر کرانا ہے, اور نکاح کی رجسٹریشن انہوں نے ضروری قرار دی اور طلاق کی رجسٹریشن ضروری قرار دی. مگر کوئی معاشی طور پہ عورت کو کوئی ایسا حق نہیں دیا عائلی قوانین نے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب زمانہ اور بدل گیا ہے, کیونکہ میں یہ کہوں کہ آپ آدمی کو منع کر دیں کہ وہ دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی نہ کرے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کو اگر طلاق کے وقت اگر آدمی کا قصور ہو تو ان کے جو انہوں نے بنائے ہیں پیسے یا کوئی ایسٹس یا کچھ शादी के दौरान वो आधे आधे कर दिए जाएं, तो फिर कोई दूसरी और तीसरी करेगा भी नहीं। तो इस किस्म की चीजें जब रखेंगे तो उससे फिर औरत जो है वो मजबूत होगी। फिर आप देखें कि जो बच्चों के विरासत का है, जहाँ तक देखें बच्चों की तवील लेना, बच्चे किसके पास जाएंगे, कस्टडी उनकी गार्डियनशिप का मामला है, तो ये तो कानून में है कि जो बाप है वो ही गार्डियन होता है, यानी कि वो ही उनका वारिस होता है। मगर औरत जो है वो उनकी उनको लेके और पाल सकती है। पहले तो लोगों का ये ख्याल था कि भाई लड़का सिर्फ 7 साल और लड़की 15 साल, ऐसा नहीं है। अदालतें देखती हैं कि बच्चे किसके पास बेहतर रहते हैं। तो ये एक किस्सा बच्चे की जो खुशहाली है वो अदालतें देखती हैं। बाकी वहाँ पे अगर औरत जो है वो बच्चे को स्कूल डालना चाहे, उसको अपने शौहर से पूछना पड़ता है। और जो बाप है ये उसके ऊपर लाजिम है कि वो बच्चे का नान और नफका देगा। और मैंने देखा है कि रोज अदालतों में, यानी कि अगर फैमिली कोर्ट ने 2000 रुपया बच्चा फी कर दिया है तो हाई कोर्ट तक पहुंचे होते हैं उसको रिट के अंदर कि जी हम 2000 नहीं दे सकते, और वकील को 50,000 दे के पहुंचे होते हैं। अब तो खैर कई जज अच्छे हैं और बहुत अच्छा उनका रवैया है, वो कह देते हैं कि नहीं हम इन मामलात में नहीं इंटरफेयर करेंगे। बल्कि मैंने अदालतों में यहाँ तक जज को एक कहते देखा है कि अच्छा अगर वो आपके पास होते तो आप क्या करते, 2000 ना उसके पर खर्चते, फिर आप कैसे कहते कि जी मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये कुछ है चीजें जो कि मेरा ख्याल है कि औरतों के लिए थोड़ा सा तकलीफ दे है, और सबसे ज्यादा तकलीफ दे कि वो कहाँ जाएं, कैसे जाएं, वो कहाँ से 50,000 लाएं वकीलों के। तो औरतों के लिए लीगल एड बहुत जरूरी है और हर शहर में जरूरी है। हर फैमिली कोर्ट के साथ एक लीगल एड का सेल होना, ये मैं समझती हूँ नहायत जरूरी है। फिर इतने साल पहले लग जाते थे, मगर अब ये है, मैं समझती हूँ कि बड़ा अच्छा माहौल है और औरतों के जो फैसले हैं वो जल्दी हो जाते हैं। अब कवानीन की जहाँ तक आप बात करें तो कुछ अमेंडमेंट्स पहले आई कवानीन में, वो भी अमेंडमेंट्स जो की वो मेरा ख्याल है किसी ने इस तरह की बगैर सोचे समझे कि अगर आप खुला के लिए जाएं तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो हकमहर है वो जब्त हो जाता है। तो ये अजीब सा कानून था कि जब मुझे दिया ही नहीं तो मैं जब्त कैसे मेरे से कर लोगे, वापस कैसे ले लोगे। फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, अब वो आ गया है कि एक चौथाई हिस्सा उसका जब्त हो जाए। मगर पहले ये तो देख लो कि औरत ने लिया है या नहीं लिया। अभी भी कई चीजें उसमें जो है बड़ी अनक्लियर है। वो इसलिए क्योंकि जो लोग कानून बनाते हैं वो फैमिली कोर्ट्स में प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, वो कोई ऊपर की चीज देखते हैं, अंदर से जो वहां पे जो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है उसको देखने की जरूरत होती है। इसी तरीके से मैं देखती हूँ कि जो कि गार्डियनशिप कोर्ट हम कहते हैं, जहाँ पे बच्चों की कस्टडी का मामला चल रहा होता है, आप सोच नहीं सकते चीखो पुकार बच्चों की, इतना माहौल जो है तबीयत खराब होती है वहां देख के। कोई जगह नहीं है कि बच्चे वहां माँ या बाप से मिल रहे हैं, कोई बैठ सके, कोई बात कर सके, और छीना झपटी हो रही होती है। मुझे ये लगता है कि इन कवानीन में बहुत सारी तरमीम और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इसी तरीके से आप देखें कि जो हमारे मसीह भाई हैं और बहनें, उनकी अजीब मुसीबत है कि वो तलाक ले ही नहीं सकते, और जो ग्राउंड्स हैं कि वो किस पे तलाक ले सकते वो इस कदर मुश्किल है कि वो होने या ना होने के बराबर है। मगर दुनिया भर के मसीहियों ने अपना कानून बदल लिया, मगर पाकिस्तान ने ना बदला। इस तरह जो हिंदू हैं, जो हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, उनके कानून बहुत बेहतर हैं हमारे उसके मुकाबले में, खासतौर पे औरतों के लिए, बल्कि मैं तो समझती हूँ मर्दों के लिए भी। इतने रिस्ट्रिक्टिव हैं, जिसे कहते हैं कि एक रिप्रेसिव किस्म के कानून हैं। एक और चीज देखें कि औरत के कहते हैं कि उसका नान नफका जो है मर्द देगा, मगर वो सिर्फ इद्दत तक देगा, जब तक औरत की शादी है और फिर इद्दत तक, उससे आगे नहीं देगा। और अगर आप पीछे जाएं तो आप 6 साल तक पीछे जा सकते हैं, पहले 3 होता था, अब 6 साल तक अगर उसने नहीं दिया। मगर जहां औरत अपना केस करती है नान नफके का, तो आदमी जिसे हम कहते हैं बाजू दावा कर देता है। अब थोड़े थोड़े अदालतों ने इस किस्म के केसेस को जरा डिस्करेज किया है, और अब जो कानून है वो कहता है कि इन सबको इकट्ठा कर दो, बजाय इसके कि अलहदा सब केसेस चले। बहरहाल जहां तक बच्चों की तहवील का मामला है वो अलहदा ही चलता है, क्योंकि उसमें काफी सारी एविडेंस होती है, क्योंकि बच्चे की खुशहाली देखनी होती है उसमें। फिर आप ये देखें कि जहां भी खवातीन अदालत में जाती हैं, ये नहीं मैं कहती सारे, मगर काफी हद तक पहले तो ज्यादा अब कम। एक जिसे आप बायस कहते हैं उसके खिलाफ होता है कि ये देखें औरत होके अपने खामन के ऊपर मुकदमा कर रही है, और पहली छुटते ही बात ये होती है कि आप जो है सुलह कर लें। हालांकि कानून में सुलह की एक प्रोविजन है, वो करके आते हैं, मगर उसके बावजूद ये बहस की जाती है कि नहीं सुलह पहले करा लें। और भाई हम कई बार कहते हैं कि वो बेचारी जब यहाँ तक पहुंच गई है वो नहीं करना चाहती, जबरदस्ती तो नहीं है सुलह कराना, और ये वकील का काम भी नहीं है सुलह कराना। मगर जब यूनियन काउंसिल में आदमी तलाक देता है तो वहां पे भी प्रोविजन है कि सुलह की, मगर वहां कोई नहीं इंसिस्ट करता कि सुलह करो। अब यूं है कि आदमी ने तलाक देनी है वो यूनियन काउंसिल जाता है, औरत ने तलाक देनी हो तो फैमिली कोर्ट जाती है, मसवा कि उसको हक अपने निकाह नामे में ही आदमी ने या औरत ने इकट्ठे मिलकर ये तय किया हो कि उसको ये हक है कि वो भी जो है शादी को यूनियन काउंसिल में खत्म करवा सके। मगर वो मेरा ख्याल है चीदा लाखों में एक कोई ऐसा निकाहनामा होता है, तो इसलिए मैं उसकी बात इसलिए भी नहीं करती हूँ, और दूसरा इसलिए भी नहीं कि पहले वो बहुत जरूरी होता था जब फैमिली कोर्ट में कई कई साल लगते थे, मगर अब फैमिली कोर्ट में देर नहीं लगती है।
निकाहनामे का सही तौर पर पूर होना कितना जरूरी है।
मैंने यहाँ तक ऐसे भी केस देखे हैं जहाँ पे हमारे दफ्तर में माँ बाप आए और उन्होंने कहा जी मौलवी साहब ने कांटा लगा दिया, अब क्या करें। तो हम तो चाहते थे कि ये शिक नंबर 18 पे हमारी बेटी को वो तहफ़ मिले कि उसको भी ये हक हो कि वो अगर चाहे तो शादी खत्म कर सकती है यूनियन काउंसिल के थ्रू। और जहाँ तक शरी हक मैर है वो तो ज्यादातर होता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो कि माशी तौर पे औरत जो है बिल्कुल सिक्योर नहीं है शादी पे, सिर्फ इसलिए भी नहीं है कि ना तो उसको मैर की श्योरिटी है, ना जब तलाक के वक्त कोई एसेट्स तकसीम की श्योरिटी है, और आपको पता है कि यहाँ पे ज्यादातर औरतों को काम तो करने नहीं देते हैं, और जो औरत कई ऐसी भी हैं जो लेडी डॉक्टर्स हैं और उनको भी कहते हैं काम ना करो, तो वो तो बेचारी बच्चे पालती है और पालने भी चाहिए, मगर आखिर जो घर का काम है वो काम ही है ना, वो बगैर पैसों के काम है मगर बहुत मुश्किल काम है, वो तो मुफ्त हो गया, मगर जो शौहर कमा के लाए वो कमाई हो गई। तो अगर वो आधा करे पूरा एसेट्स वगैरह ये वो, और शौहर अपनी कमाई के हिस्सा दे उसको, तो फिर मैं समझती हूँ कि जो बराबरी है औरत की वो हो सकती है। क्योंकि जब औरत घर में से ही कमजोर निकलेगी तो बाहर जाके क्या करेगी। और मैंने ये भी देखा है कि न सिर्फ ये तशद्दुद बहुत है घर में, घर घर में ये झगड़ा है, घर घर में ये रोना है। यकीन करें कि जब से ये कानून निकला है जो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया है कि औरतों के खिलाफ तशद्दुद का, हालांकि वो अभी नोटिफाई भी नहीं हुआ और उसमें प्रोटेक्शन के वो जो ऑफिसर्स है वो भी अपॉइंट नहीं हुए, रोजाना 4-5 फोन हमारे दफ्तर आते हैं कि हमें बताएं तो सही इस कानून का, हम तो मारे खा के तंग आ गए हैं। और फिर वो लोग हैं वो औरतें हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर मंशियात बहुत है, जिनके घर में आदमी मंशियात करते हैं वो औरतें रोज मारे खाती हैं, और उनसे फिर जो छोटी मोटी वो कमाई करती हैं वो भी छीन के ले जाते हैं। वो औरत कहाँ जाए, पुलिस स्टेशन वो नहीं जा सकती, पुलिस स्टेशन जाएगी तो वो कहेगा पहली बात ही पुलिस वाला ये कहेगा कि शौहर के खिलाफ तुम किस किस्म की औरत हो, यहाँ से ही प्रेजुडिस जो शुरू होगा तो कहाँ जाएगी। मैं समझती हूँ दो चार चीजें आने की जरूरत है, मसलन यहाँ पे तो ये भी कानून नहीं है कि जो निकाहनामा आप रजिस्टर कराते हैं उसका कोई सिस्टम है सच नहीं है। मसलन मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि मेरे पास ऐसे केसेस आए जहाँ पे उस औरत ने कहा कि मेरे खामंद ने दूसरी शादी कर ली है। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है, तो सबूत तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने वल्ला आलम किस जगह जाके की और कौन से यूनियन काउंसिल में दर्ज कराई। अब नादरा आहिस्ता आहिस्ता निकाहनामे जो है वो दर्ज कर रही है, क्योंकि एक सेंट्रल सिस्टम होना चाहिए जहाँ से लोग पता कर सके कि भाई किसने कितनी शादियां की हैं, किससे की है, तलाक कब हुई है। यहाँ पे ये बहुत मसला है क्योंकि लोग रजिस्टर भी नहीं कराते हैं। अब एक औरत है उसको जुबानी तलाक दे दी, इस तरह के तो रोजाना केस आते हैं, वो भागी हुई आती कि मुझे तलाक हुई है या नहीं हुई है, हम कहते हैं कानूनी तौर पे नहीं हुई, जब वो मोहल्ले में मौलाना साहब के पास जाते हैं वो कहते हैं हो गई है, तो वो औरत इसी डायलेमे में रहती है। तो आदमी की मर्जी है, वो अगर चाहे कह दे के हो गई है, चाहे तो कह दे नहीं हो गई है। तो ये चीजें जो है इनको हमें देखना है कि तलाक का रजिस्टर करना, फिर वो जो शिके हैं कि अगर ना करे कोई रजिस्टर और वो ओनर्स आदमी पे है कि वो ही कराए, तो उसके अंदर जो सजा है वो कोई मुस्बत किस्म की सजा होनी चाहिए, बजाय इसके कि बस हल्की फुल्की सी सजा और वो ना कभी आज तक हुई किसी को, ना किसी ने किया। और जो निकाह खान है उसके ऊपर कड़ी सजा होनी चाहिए। निकाह खान के कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आप कोई क्वालिफिकेशन निकाह खान की रखें, वो उसको बकायदा तौर पे सरकारी मुलाजिम होना चाहिए किसी ग्रेड का, ताकि वो अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो सरकार को। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हम तो यहाँ तक समझते हैं कि ये जो निकाह नामा फेल करना या ये चीजें करनी, ये इनका काम नहीं है। ये जरूरी है कि आप जो है किसी वकील की विटनेस भी कराएं।
ख्वातीन के मुआफिक कानून उस वक्त ही तब्दीली ला सकते हैं जब इन्हें मुकम्मल तौर पर सख्ती के साथ नाफिज किया जाए। ऐसा मौसर कानून निफाज जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस और अदलिया सब सिन्फी इंसाफ को यकीनी बनाने पर यकीन रखते हों, ऐसा होगा तब भी एक आम औरत की जिंदगी में इन बनाए गए कवानीन से इंसाफ मिल सकेगा। ये थी आसिमा जहांगीर।
सआदत अली खान थे प्रोड्यूसर पाकिस्तान कमीशन बाय इंसानी हकूक की इस पेशकश के।
दानिशमंदों सुनो तमाम, अर्ज फकीर करेंदा।
अरी बजर गुलूकार हैं, सूफियाना कलाम इनकी शोहरत की वजह है।
जो कोई आपे चंगा होवे सबनू भला तकेंदा।
हम पाकिस्तानी अजीम विरसे के वारिस हैं। ये विरसा है इंसानियत का, ये विरसा है सबका ख्याल रखने का, ये विरसा है सबके लिए बर्दाश्त का। क्यों ना हम इस इंसानियत के विरसे की हिफाजत करें, क्यों ना ये विरसा आने वाली नस्लों को भी मिले।
मेरे देश के बासी यार बहुत वारफ्ता दे प्यार बहुत।
पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक।
मेरे देश में है इम्कान बहुत।
इंसानी हकूक के मौजूदात पर मजामीन और पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक की सरगर्मियों की रिपोर्ट्स के लिए पढ़िए हमारा माहनामा जहदे हक। पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक का प्रोग्राम आप हर हफ्ते और इतवार की दोपहर 12:30 बजे सुनते हैं। आपकी राय, आपके तबसरे हमें इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने में मदद देंगे। हमें ईमेल करें hrcpradio@gmail.com या खत लिखें इस पते पर बात हक की, पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक, 107 टीपी ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन, लाहौर।
राबिया अली को इजाजत दीजिए।